लोधी कॉलोनी आउटसाइड इन दिल्ली। देव का घर दिल्ली से बाहर की ओर है, जहां उसका अपना घर है, जहां देव की माँ कौशल्या देवी और देव की छोटी बहन दीपाली रहते हैं। देव के पापा नहीं हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। देव की फैमिली का अपना कपड़ों का बिजनेस है, कई दुकानें हैं, पर देव को वो काम नहीं करना है। देव को तो किसी ऑफिस में जॉब करनी है, इसलिए उसने काम करने के लिए आदमी रखे हुए हैं और अपने मौसी के लड़के बिरजू को सब सौंप रखा है। महीने में एक बार आकर देव सब देख लेता है और खुद दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता है। देव अक्सर संजीव और विराट के साथ एक किराए के घर में रहता है। हफ्ते में या महीने में एक बार दो घर आता है। अरे माँ, देव भैया कहाँ हैं? दीपाली ने कौशल्या देवी से पूछा। कहाँ होगा दीपा, वो चला गया वापस, कह रहा था कॉलेज है, कौशल्या देवी ने दीपा को चाय देते हुए कहा। ये भैया भी ना आंधी के जैसे आते हैं और तूफान के जैसे चले जाते हैं, रात ही आए और सुबह भाग जाते हैं, दीपाली ने चाय की चुस्कियां लेते हुए कहा। तो मेरा बेटा पढ़ाई करता है, जाना तो पड़ेगा ना, उसे नौकरी करना है, पढ़ाई पूरी होगी तभी तो जो चाहता है वो होगा, कौशल्या देवी ने कहा। क्या जरूरत है माँ, हमारी दुकानें संभाल ले भैया, यहाँ मालिक बने नौकर बनकर रहना जरूरी है क्या, दीपा ने कहा। मेरे सामने बोल दिया है तुमने, उसके सामने मत बोलना, नहीं तो जान ले लेगा, नहीं पसंद तो नहीं पसंद उसे ये काम, और जानती हो तुम, जो करेगा अपने मन का, कौशल्या देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, वो तो देख ही रहा है, हम दोनों कब से कह रहे थे आपको बहू और मेरी भाभी ले आओ, पर अब जब अपना मन है तभी ला रहे हैं, पसंद भी खुद ही कर ली, और अब और जल्दी भागने की जल्दी रहती है उन्हें, भाभी से मिलने को दिल बेचैन जो रहता है, दीपाली ने हंसते हुए कहा। तू भी ना दीपा, वैसे अच्छा ही है, देव की दुल्हन घर आ जाएगी और नहीं भागेगा कहीं, अब इस घर में लाने की तैयारी कर रहा है और शादी उसे करनी है तो पसंद भी तो देव की होगी ही ना, कौशल्या देवी ने दीपाली के सर पर हल्का सा थप्पड़ मारते हुए बोला। आह माँ, माना कि भैया आपके लाडले हैं, चलो कोई बात नहीं, हमें पहले भैया ने बताया और कल फोटो दिखाई और अब जल्द संध्या भाभी से मिलवाने वाले हैं, जो फोटो में इतनी प्यारी दिखती है सामने होगी तो हाय, दीपाली ने बाहें खलाते हुए कहा। तो मेरा बेटा लाखों में एक लाया है अपनी दुल्हन, और मेरा बेटा खुद कम थोड़ी है, बस जल बहू का चेहरा देख लूं, कौशल्या देवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। ये भी जब आपके बेटा चाहेंगे तभी होगा, कल तो कह रहे थे ले चलेंगे, अब देखो खुद अकेले ही भाग गए, दीपाली ने कहा। दीपा, देव ने जानती हो क्या बोला, कौशल्या देवी ने कहा। कैसे पता होगा माँ, बात तो वो आपसे करते हैं, मुझे तो फोटो दिखाकर निकाल दिया आपने से, वैसे क्या बात हुई आप दोनों की, मुझे भी बता दो। मैं बताता हूँ, बिरजू ने आते हुए कहा। आ गया बिरजू बेटा, कौशल्या देवी ने कहा। हाँ राम राम मौसी, बिरजू बोला। आप क्या बताएंगे बिरजू भैया, दीपाली ने कहा। पहले चाय तो दे, बिरजू ने कहा। लो बेटा चाय, कौशल्या देवी ने कप पकड़ाते हुए बोला। धन्यवाद मौसी, बिरजू ने कहा। अब तो चाय भी मिल गई, अब तो बताओ हमारे राजा ने क्या ऐलान किया था, दीपाली ने बोला। इस पर माँ और बिरजू दोनों हंसते हैं। वो देव भैया ने मुझे बताया सब, और मुझे बोला है रविवार को हम आप दोनों को दिल्ली ले आए, भाभी और उसके परिवार से मिलवाने के लिए। माँ, हाँ हम रविवार को जा रहे हैं। दीपाली, सच? मतलब चार दिन बाद हम भाभी से मिलेंगे? यस। माँ कितनी खुश है। बिरजू, इस घर में रौनक लगने वाली है अब देव भैया की मेहरबानी से, मौसी तो तैयारियां शुरू कर दीजिए। माँ, हाँ बिरजू, देव बोल रहा था कल क्या करना है उसके लिए फ़ोन करेगा, सब खुश होते हैं। बिरजू, ए दीपा अभी नहीं जाना, कुछ काम कर ले, चार दिन पड़े हैं, और मौसी प्रणाम, हम भी दुकान जाते हैं। कौशल्या देवी, ठीक है बेटा। अक्षित का घर, अक्षित दौड़ा हुआ घर के बाहर आता है। संध्या आती ही होगी, मैं तो रेडी हूँ, बस एक बार आ जाए, आज तो बात करके ही रहूंगा, अक्षित रास्ते की ओर जिस तरफ से संध्या आती है देखते हुए बोलता है। थोड़ी देर बाद अक्षित का ध्यान अपनी घड़ी की ओर जाता है, 7:30 ही हुए हैं, मैं इतना जल्दी रेडी हो गया, 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ उसका, जो अभी तक उठी भी नहीं होगी, मतलब उठाया भी नहीं गया होगा, और कॉलेज तो 9 बजे होता है और संध्या 8:15 के बाद आती है, संध्या से मिलने की जल्दी में ध्यान ही नहीं रहा कि कॉलेज 9 बजे होता है, सच में कैसा पागलपन है, खुद से बोलते हुए अक्षित घर के बाहर ही रखे पत्थर जहां अक्सर संध्या का वेट करता है अक्षित बैठ जाता है। अभी तो वो मैडम उठेगी फिर आएगी, यही वेट करना पड़ेगा, अक्षित खुद से कहता है और अपने फोन की ओर देखने लगता है। संध्या का घर, दादी सोफे पर बैठी मुस्कुरा रही होती है। नीलिमा, ये खिड़की क्यों खोली है, संध्या का दरवाजा उधर है, वहां से बताओ ना। नीलू, प्लीज वेट एंड वॉच, रंजन मुस्कुराते हुए बोला। नीलिमा सबकी ओर देखते हुए खिड़की से अंदर झांकते हुए कहती है, लो ननद जी तो सो रही है, यहाँ से आवाज देंगे क्या आप, रंजन, संध्या को नीलिमा ने पूछा। रितु, भाभी देखते है ना क्या होता है, कहते रंजन अपना फोन निकालता है और कहता है, सबसे पहले हम संध्या को फोन करेगा, हमारी संध्या हमारी आवाज से नहीं अपने फोन की आवाज मतलब गाना सुनकर अपनी आंखें खोलती है, ख्वाबों में खोई रहती है जहां से उसे ऐसे बाहर लाया जाता है। नीलू, हमेशा से ऐसा करती है। ऋषि जी, हाँ बेटा बचपन से। रितु, पहले मैडम किसी आने के सपने देखती थी, अब लगता है देव को देखती है। इस पर सब हंसते हैं। रंजन, मैंने तो सोचा था देव के आने के बाद ये आदत बदलेगी, चुटकी की, पर लगता है देव के साथ सपने बड़े ही देखती है। हंसते हुए। नीतू, अरे अब उठा भी दे, कॉलेज भी जाना है उसे, लेट हो गई फिर कहेगी उठाया नहीं। ओके ओके, शहजादी को उठाते हैं, कहते हुए रंजन फोन लगाता है। फोन लगाते ही फोन बजता। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, दिन ये सोना और चांदी रात बन गई, सपने तेरी चाहतों के देखती हूँ हर घड़ी। रितु, वाह क्या गाना लगाया है मैडम ने, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच होता है। नीलू और रितु ताली देते हैं हंसते हुए। रंजन, रोज चेंज करती रहती है, थकती नहीं है क्या ये पागल। ऋषि जी, लो उठ गई, गाना सुनकर अंगड़ाई लेते हुए संध्या उठ जाती है। नीलू, हाँ जाग गई, एक ही रिंगटोन में वाव। रंजन, यही जरिया है। नीलू, बड़ा अच्छा है, कहते संध्या को नीलिमा बोलती है, ननद रानी बाहर आइए। क्रमशः